पीएसीए क्या है और यूएन में इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
सो पीएसीए का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज। इन मुद्दों पे अगर हम ध्यान दें और देखें कि हमारे जो एसजी हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने इन दोनों ही चीजों को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। और उस परिभाषा के अनुसार अगर हम इसे देखेंगे तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वो है जब कोई व्यक्ति जो यूनाइटेड नेशंस के लिए, चाहे एक कंसल्टेंट के रूप में या एक पार्टनर के रूप में या फुल टाइम हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके रूप में काम करते हैं, और जब फील्ड में वो जाते हैं काम करने के लिए और जब वो यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड में, तब वहाँ जो हमारे साथी हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनको हम सर्व करते हैं, जो हमारी कम्युनिटी हमारा समुदाय है, उन लोगों के बीच में अगर ऐसा होता है कि हम में से कोई व्यक्ति उन्हें किसी चीज का प्रलोभन देकर, उन्हें ऐसी कोई चीज जो उनको मिलनी ही थी, अधिकार था उनका, वो चाहे वो कोविड कोविड के दौरान राशन हो या किसी भी और तरीके का राशन, पानी, कोई भी चीज बांटते समय, या वो उसे रोकने की धमकी देकर, या वो स्पेशली उनके ऊपर कह के कि हम तुमको ये स्पेशली देंगे अलग से, और इस तरीके की कोई भी चीज देकर अगर वो उनसे किसी तरीके के यौन रूप से उनका इस्तेमाल करते हैं, उनसे कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट कराते हैं जो सेक्सुअल है, उसे हम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। और इसी तरह यूएन के किसी व्यक्ति के द्वारा अगर समुदाय में जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर किसी तरीके की जोर जबरदस्ती की जाती है, किसी तरीके का भ्रू इस्तेमाल करके, कोर्जन का इस्तेमाल करके यदि उनके साथ कुछ ऐसा किया जाता है, तो जो यौन है, यौनिक है और यौन अपराध है, हम सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं। और यूनाइटेड नेशंस में हमें इस बारे पे हम काफी बातचीत करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम काफी काम कर रहे हैं इस पे। इसकी जरूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि कई बार किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे या तो युद्ध चल रहा हो या अंदरूनी कुछ ऐसे हालात हों जो बिगड़े हुए हों, चाहे या किसी तरीके का डिजास्टर आया हो, वहां पे जब यूनाइटेड नेशंस के लोग जाते हैं और अगर वहां पे जो कम्युनिटी है, जो वल्नरेबल है, उनका उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं जो नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज करते हैं, तो ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिनको हम सर्व करने के लिए यहाँ हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके मानवाधिकार का हनन ना होने दें और उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो हमारी जिम्मेदारी है। और इसी वजह से हम पीएसईए पे बहुत ही से काम करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं।
तो ये बताइए कि इस विभाग की शुरुआत कैसे हुई और इसके दायरे में क्या-क्या आता है?
मुझे लगता है कि इसके लिए हमें बहुत पहले जाना पड़ेगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि जब किसी देश में किसी तरीके की आपदा या विपदा आई हुई होती है, चाहे वो युद्ध हो या जैसा मैंने पहले कहा, चाहे वो अंदर ही कोई ऐसा डिजास्टर आया हो, जैसे कि अगर सूखा पड़ा है, बाढ़ आई है, इस तरीके के जब सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो हमें मदद की जरूरत पड़ती है। और ऐसा ही कई देशों में देखा गया कि मदद के नाम पर जब लोगों को भेजा गया यूएन के द्वारा, तो वहां जाकर के कुछ लोगों ने अपने इस पावर का, अपनी जो सत्ता उनके हाथ में थी, उसका गैर जरूरी इस्तेमाल किया, और जो लोकल लोग थे, जो हमारा समुदाय था, उनके इन हालात का फायदा उठाने की कोशिश करी, कभी खाना देकर या कभी कुछ और सामान देकर उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। और इसी को रोकने के लिए इस मुद्दे पे काम को गहरा किया जाने लगा, और धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में, 2003 से आज 2023 में, 24 में, हम जो 20-21 साल हम लोगों ने काम किया है, इसमें धीरे धीरे करके इस विभाग को काफी महत्व दिया जाने लगा। कोशिश की गई कि इसको थोड़ा एक ऐसा रूप दिया जा सके जहाँ हर कंट्री में, हर देश में अपने अपने कुछ लोग रहें, चाहे वो एजेंसी के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर के लोग हों या कोई एक ऐसा स्पेशल व्यक्ति हो जो इस एक नेटवर्क के रूप में इसको सुचारू रूप से काम को कर सके। और एसजी के एक स्पेशल मेजर्स का जो बुलेटिन है, उसके बाद काफी क्लियरली एक ढांचा भी तैयार किया गया है जहाँ पे न सिर्फ हर देश में, अलग अलग देशों में, बल्कि एशिया पैसिफिक लेवल पे और बाकी विदेशों में भी हर जगह पे कुछ लोग इस काम का कार्यभार संभाल रहे हैं और काफी सुचारू रूप से इस काम को करने की कोशिश की जा रही है।
तो ये जो ढांचा है जिसकी आपने बात की है, कि ये केवल महिलाओं के लिए है या सभी के लिए, और सभी से क्या मतलब है?
तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। मुझे मुझे लगता है कि जब भी हम यौन उत्पीड़न या यौन दुर्व्यवहार की बात करते हैं, तो हमारे एक छवि जो सबसे पहले उभर के आती है वो है महिलाओं की और दूसरी शायद बच्चों की। बट इस काम को करते समय एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को हमें रियलाइज करना है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि एक्चुअली देखा जाए तो यौन उत्पीड़न किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो, महिलाओं हो, बड़े हो, बच्चे हो, और चाहे वो ऐसे व्यक्ति हो जिनको जो जेंडर की हमारी परिभाषा है महिला और पुरुष की, उससे अलग रूप से खुद को देखते हो, चाहे वो ट्रांस व्यक्ति हो। यौन उत्पीड़न जो है वो यौन नाम तो आ गया है बट उसमें कुछ भी सेक्सुअल नहीं है, वो रोमांस या सेक्स से जुड़ा नहीं है, वो पावर से, सत्ता से जुड़ा है। तो जिन लोगों के हाथ में पावर होती है और जिनके पास नहीं होती है, उनके ऊपर अक्सर ये देखा जाता है कि वो यौन उत्पीड़न करते हैं, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमारा जो PSEA का काम है वो सारे समुदाय के लिए है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, किसी भी जेंडर के हों, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समुदाय को एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी जगह दे सकें जहां उन्हें किसी भी तरीके के यौन उत्पीड़न का सामना ना करना पड़े। हम लोगों में से चाहे वो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हो, चाहे UN के साथी हो, उनके द्वारा उनका यौन उत्पीड़न ना हो।
तो मतलब ये कहा जाए कि संयुक्त राष्ट्र, जहां दुनिया भर में लैंगिक समानता या यौन उत्पीड़न से बचाव के क्षेत्र में काम करता है, तो ना केवल बाहर बल्कि UN के अंदर भी, अपने अंदर भी वो झांक कर ये देखता है कि किसी भी तरह का कोई यौन उत्पीड़न संस्था के अंदर ना हो या उन लोगों के साथ ना हो जिनके साथ हम काम करते हैं। तो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, और अगर हम एशिया प्रशांत की बात करें क्षेत्र में, ये किस तरह से काम करता है?
दो चीजें बड़े क्लियर करना चाहेंगे यहाँ पे। पहला तो ये कि एक ओर जहाँ हम PSEA पे बात कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, जैसे इसको परिभाषित किया गया है, यहाँ हम अपने साथियों से, अपने समुदाय को के बचाव की बात कर रहे हैं। और हमारे साथी, जैसे मैंने कहा, चाहे वो UN में काम करते हो या हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हो, सब आ जाते हैं उसमें, चाहे वो हमारे हमारे काम किसी भी तरीके से रूप से हमारे साथ जुड़े हों, उनकी हम बात करते हैं। पर जहां तक अपने भीतर देखने की बात है, वो हम सेक्सुअल हरासमेंट का उसको नाम देते हैं, जहां दो व्यक्ति जो एक दूसरे से यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के काम के लिए जुड़े हुए हैं, इनके बीच में अगर यौन उत्पीड़न होता है तो हम उसे सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। जहां तक एशिया पैसिफिक के बारे में हम बात करें, जो अब तक ढांचा उभर के आया है वो ये है कि हमारे पास एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द स्पेशल कोऑर्डिनेटर ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से गाइडेंस के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरी ओर इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमिटी करके एक कमिटी का भी गठन किया गया है UN में, जो हमारे सारे जो हमें कागजात की जरूरत पड़ रही है, जो हमें दिशा निर्देश की जरूरत पड़ रही है, उन सभी पे काम कर रहे हैं, और सारी संस्थाएं इन दोनों ही बॉडीज से काफी कुछ सीख पा रही हैं। पर एशिया पैसिफिक में अगर आप बात करते हैं, तो हमारे कई सारे देशों में, ना कि सब देशों में, बट कई सारे देशों में हमने देखा है कि एक छोटा सा नेटवर्क का गठन किया गया है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, तो हमारे यहाँ 20 संस्थाएं हैं यूनाइटेड नेशंस की, जो एक नेटवर्क के रूप में साथ आई हैं, और हर एजेंसी के 2 से 3 या 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फोकल पॉइंट के रूप में स्टैब्लिश कर दिया गया है।
ये बताइए, क्या भारत में जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें इससे संबंधित मामले देखने को आते हैं?
तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पिछले 3 सालों का डेटा जब हम उठा के देखते हैं भारत से, खासकर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज के केसेस का, तो हमने 0 केसेस रिपोर्ट किए हैं। पर हम अक्सर इस बात की चर्चा नेटवर्क में करते हैं, और हम सभी का मानना है कि क्योंकि कोई केस नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा काम यहाँ खत्म हो गया है। बल्कि हम सबको ये भी लगता है कि केसेस ना आने का अर्थ ये भी है कि अभी जो कुछ भी छोटा मोटा इधर उधर हो रहा होगा वो हम तक शायद पहुंच नहीं पा रहा है। तो फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि हम एक साथ जुट कर समुदाय तक, चाहे वो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स के द्वारा हो या सीधे रूप से हो, इस बात को पहुंचा सकें कि यदि उनके साथ किसी भी रूप से हम में से किसी साथी ने यौन उत्पीड़न किया है, दुर्व्यवहार किया है या कर रहे हैं, तो उसकी खबर वो हम तक जरूर पहुंचाएं और हम उनका पूरा साथ देंगे और कोशिश करेंगे कि उनको न्याय सही समय पे सही तरीके से मिल सके।
तो ये पूरी प्रणाली किस तरह काम करती है? शिकायत होने पर उससे किस तरह निपटा जाता है? संयुक्त राष्ट्र में इसके लिए क्या प्रावधान है?
संयुक्त राष्ट्र भारत में और बाकी बाकी सभी जगहों पे, जैसा मैं आपसे कह रही थी कि एक हमें गाइडेंस, कई सारी गाइडेंस बल्कि है मौजूद। हर यूनाइटेड नेशंस की संस्था में, अलग-अलग संस्थाओं में कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम है जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, जहां पे यदि SEA का कोई केस है, मान लीजिए किसी का, तो वो वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं और इस रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लिया जाता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि आप अपने नाम से अपनी पहचान जताते हुए रिपोर्ट नहीं करना चाहते, तो आपको पूरी लिबर्टी है, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपना नाम छुपाकर अनोनिमस रिपोर्टिंग करें। साथ ही हम जब अपने लोगों की, जो संयुक्त राष्ट्र के साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं, हम जब इन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, तो हम इन्हें काफी अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे, अगर आपने कोई किस्सा, मान लीजिए, सुना भी या कुछ उड़ती उड़ती खबर भी आपके पास आई, तो माना बेशक आपके पास पूर्ण जानकारी नहीं है, पर अधूरी जानकारी में भी अगर आपको लगता है कि अरे कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे यौन उत्पीड़न और यौन दुर्व्यवहार हो रहा है कम्युनिटी के साथ हमारी तरफ से, तो आप उसका रिपोर्ट जरूर करें। संयुक्त राष्ट्र आपका पूरा ध्यान रखेगा। हमारी विसिल ब्लोअर की पॉलिसी है, जहां हम बहुत साफ ये कहते हैं कि यदि आपने किसी खास कारणवश रिपोर्ट किया है किसी चीज को, और मान लीजिए कल को वो केस हमें पूरी तरीके से प्रूव नहीं हो पाता या सच्चा नहीं निकलता है, तो भी आपके विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने रिपोर्ट करी ताकि आप इस दुर्व्यवहार को होने से रोक सकें। सो हम कोशिश ये करते हैं कि चाहे सुनी सुनाई बात हो या सामने आंखों देखी बात हो, खुल करके हमारे साथी और हमारे समुदाय के लोग रिपोर्ट कर सके हम तक। और इसके बाद का जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा एक प्रोसेस है, वो हमके पीछे चलता रहता है, जहां अगर मान लीजिए कल को कोई केस आता है, तो जो इन्वेस्टिगेट करने वाली अथॉरिटी है, वो कोशिश करेंगी कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मतलब बनाए रखा जाए, और साथ ही साथ ये जो भी हमारे विक्टिम, हमारे सर्वाइवर हैं, उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके।
तो शिकायत आने के बाद जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसको किस तरह के नतीजे भुगतने पड़ते हैं, तुरंत और आरोप सिद्ध होने के बाद दोनों?
IASC, जैसे मैंने जिनका पहले जिक्र किया, इन्होंने हमें 6 ऐसे कोर प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको हमें मान करके चलना जरूरी है। और उसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल जिस पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी, वो ये है कि अगर किसी के विरुद्ध ये प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज या अब्यूज किया है हमारे समुदाय के किसी व्यक्ति के साथ, तो उनकी नौकरी तुरंत जा सकती है। हमारा ध्यान इस ओर रहता है कि जिन्होंने आरोप लगाया है या जो व्यक्ति हमारे तक चल के आए हैं शिकायत करने के लिए, किस तरह से हम उन्हें ये यकीन दिला सकें कि हम उन्हीं को अपने सारे काम के बीच में, के मध्य रख करके हर निर्णय को लेंगे। मान लीजिए कल को जिन्होंने आरोप लगाया है वो इस आरोप के साथ आगे नहीं जाना चाहते, या वो कंप्लेंट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ हम तक खबर पहुंचा के अलग हट जाना चाहते हैं, या उन्हें हमसे ये उम्मीद है कि हम उनकी किसी तरह से मदद कर सकें, अगर उनकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ या किसी भी और रूप से उनको हमारी मदद की जरूरत है, तो ये भी संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि हम उन तक उस मदद को पहुंचा सके, उन्हें ये मदद मुहैया करा सके।
भारत के अलावा जो दक्षिण एशिया के दूसरे देश हैं, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों में इसे लेकर क्या प्रगति हुई है और यूएन प्रणाली पर इसका किस तरह का प्रभाव देखने को मिला है?
कई सारे देशों में हमारे आसपास काफी काम किया गया है, जैसे कि नेटवर्क का एक गठन करना, कोशिश करना कि नेटवर्क में सिर्फ यूएन की संस्थाएं ना हो बल्कि और जो हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हों वो भी आ जाएं, लगातार यूएन के भीतर ट्रेनिंग करना, कम्युनिटी तक पहुंचना, यहाँ तक कि नेपाल में, जहां तक मेरा मेरी याददाश्त है, उनके पास एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी है जहां पे किसी भी समय कोई भी व्यक्ति SEA की कंप्लेंट दे सकते हैं। यूएन के लिए इसके ऊपर इसका क्या असर पड़ा है, मैं बोलूंगी कि हमारे लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम निकले हैं मानवाधिकार को का स्थापना कर की स्थापना करने के लिए, तो पहली चीज तो वो स्थापना हम ठीक से कर सकें, और दूसरी चीज कि हम उसके कहीं हनन में ही ना जुट जाएं और इस वजह से कहीं अपना ही जो हम जो भरोसा लोगों का यूनाइटेड नेशंस पे संयुक्त राष्ट्र पे है वो ना टूट जाए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो नेटवर्क्स चल रहे हैं अलग अलग देशों में, हम इससे एक चीज तो स्टैब्लिश कर पाए हैं ये कि अंदर के लोगों को पता है कि किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज हमारी हमारे समुदाय के साथ या हमारे दफ्तरों के भीतर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरी चीज जो हम स्टैब्लिश कर पाए जो कि हम अपने समुदाय को ये विश्वास दिला पा रहे हैं कि अगर आप हम तक किसी तरीके की जरूरत के तहत आएंगे तो आप हमारे साथ सुरक्षित हैं।